जैसे आदमी मति करता है ऐसे गति को पाता है। मैं दुखी हूं ऐसा एक 24 घंटे कोई विचार करे तो दुख के दरिया में डूब जाता है। मैं बीमार हूं ऐसा भाव करे, मेरा कोई नहीं मैं बीमार हूं, तो वैसे ही हो जाता है। मैं बंधन में हूं वैसा चिंतन करे 24 घंटा तो पाएगा कह रहे बड़ी परेशानी में। और मैं मुक्त हूं इस प्रकार का भाव यदि दृढ़ कर दे तो मुक्त है। बंधन के भाव वाला बंध है, मुक्त के भाव वाला मुक्त है। ईसा के भाव वाला ईसा है, मोहम्मद के भाव वाला मोहम्मद का भक्त है। हिंदुत्व के भाव वाला हिंदू है, पारसी के भाव वाला पारसी है। सब भाव ही तो है, सारा विश्व भावना मात्र है, उसमें ठोस नहीं है, कोई सत्य है ऐसी बात नहीं। उसी परमात्मा की सत्ता से जो वृत्ति पूर्ति है और जैसे जैसे कल्पना होती है ऐसा सत्य हो वास्ता है। तो परमात्मा जो है शुद्ध है, और उस शुद्ध परमात्मा में जो कलना हुई उस कलना से ही जगत भासता है, शुभ अशुभ सत्य असत्य। ये कलना को जो मोड़ देता है वो साक्षात्कार कर लेता है, कलना को जो देख लेता है। कलना माना क्या? पूर्णा भावना। अब जब दुख आता है तो समझ लो कि दुख की भावना आई है, दुख तो कहीं है नहीं, दुख की भावना है। दुख कितना ही पड़े और तुम्हारा भाव नहीं उठता तो दुख नहीं डाले। अस्पताल में कितने ही लोग मरीज मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, चीख रहे हैं, लेकिन उन मरीजों में तुम्हारा भाव नहीं है, अपना तो ममता नहीं है, तो कुछ नहीं। और जिसमें तुम्हारी ममता होती है, शत्रु में वैर होता है, तो शत्रु जब बीमार पड़ता है कटता है ऑपरेशन होते हैं आदि फैल होता है, तो आपको आपकी चेतना में सुख का भाव पैदा हो जाता है। हर उससे बोले अगर मित्र को सुख मिलता है तो आपके अंदर सुख का भाव पैदा होता है। कि जगत भावना मात्र है, वेदांत पढ़ना चाहिए, वेदांत बुद्धि, कि वेदांत सुनकर मनन करना चाहिए, नहीं तो रोते ही रहेंगे चाहे कितना भी ध्यान हो जाए। जब तक वेदांत का मनन नहीं होता, आत्मज्ञान का मनन नहीं होता, इस परमात्मा चेतना की कलना का रहस्य आदमी नहीं समझता, उस रहस्य में टिकता नहीं, तब तक ये कलनाओं के चक्कर में मारा मारा फिरता। और ये कलनाएं मोह से, राग से, अविद्या से, अविद्या सारे दुखों का अनर्थ है। अविद्या जो विद्यमान है उस परमात्मा को न देखना है दे, और अविद्यमान में कलना पैदा हो जाए, इसका नाम अविद्या। जरा ऊंची लेवल का है थोड़ा, ये समझे बिना परम शांति के द्वार नहीं खुलते। तो जगत पूर्णा मात्र है, और जैसा जैसा पूर्णा करते हैं ऐसा सत्य उभरता है। लीलावती का पति पूर्णा कर रहा है युद्ध होने का, और उसका शत्रु और उनके युद्ध हुई तो शत्रु का दृढ़ निश्चय था कि मैं जीतूं और मुझे राज्य मिले पृथ्वी का। लीलावती का पुरुष पति का विचार था ठीक है जीत लेंगे, नहीं तो भगवान के पास जाएंगे। तो उसके संकल्प में उसके पुण्य में थोड़ी दृढ़ता कम थी, तो जिसके संकल्प में दृढ़ता कम थी वो हार गया, और जिसमें दृढ़ता ज्यादा थी वो जीत गए। लीलावती रोई और सरस्वती देवी प्रकट हुई, उपास्य देवी। देवी को पूछा कि मैं तुम्हारी पूजा करती हूँ फिर भी मेरा पति क्यों चला? कि उसकी भावना ऐसी थी, शत्रु की अपेक्षा उसकी भावना यहाँ रहने की कम थी, शत्रु की ज्यादा थी, तो शत्रु जीत गया। और उसकी भावना लोकांतर में जाने की थी, मैं वहां जाऊंगा ईश्वर के पास जाऊंगा, हार गया तो ईश्वर के पास जाऊंगा। वहां भी मेरे को सुख मिलेगा। तो अब देख मैं तेरे पति को दिखाता है। तो लीलावती का अंतवाहक शरीर लेकर सरस्वती आकाश में उड़ी और जहां उसका पति मरकर अपने भावना के अनुसार वहां भी वो देख रहा था। जैसे आप सपने में भावना के अनुसार राज्य देखते हैं, वजीर देखते हैं, तख्त देखते हैं, गादी नशीन अपने को देखते हैं जैसे सपने में, ऐसे ही लोकांतर में उसका पति भावना के बल से देख रहा था। तब लीलावती कहती है कि ये क्या बात है, मेरा पति इधर कैसे, और ये सब वजीर और उनके इधर उधर के जय घोष करने वाले। बोले सारा जगत भावना मात्र है, उस चेतन परमात्मा ने जैसे जैसे आदमी भावना करता मरने के बाद भी ऐसे ही दिखता है। एक माई जा रही थी, मस्त फकीर थी, ब्रह्मज्ञानी थी माई। एक हाथ में उसे पानी था, दूसरे हाथ में आग थी। पंडितों ने पूछा, मुल्ला मौलवियों ने कि कहाँ जाती है। उसने कहा कि मैं जाती हूँ तुम्हारे स्वर्ग को आग लगाने, तुम्हारे बिस्त को आग लगाने जाती हूँ, और तुम्हारे दोजक को जरा पानी छांट के ठंडा बनाने जाती हूँ। बिस्त को आग लगाने जाती हूँ और दोजक को शीतल करने जाती हूँ। मतलब वो फकीर मस्त फकीर थे कि तुम्हारा भावना में ही बिस्त है और भावना में ही दोजक है, तो इन दोनों को जो दोजक की भावना है, दुख की भावना है, उसको पानी डालकर हटाती हूँ, और जिसमें सुख की भावना है उसको आग लगा के पूरा कर देती हूँ। भावनाओं से हम भ्रमित हो रहे थे, मैं स्वर्ग में जाऊं। फिल्म में भी तो भावना होती है तब मजा आता है, भावना होती है तभी मजा आता है। दुराचार में भी जब कुभाव होता है तब मजा आता है, सदाचार में स्वभाव होता है तब मजा आता है, और मौन में भी एकांत में भी जब समझ का भाव होता है तो एकांत में मजा आता है। पापी आदमी को मजा नहीं आएगा, ना समझ आदमी को मौन में मजा नहीं आएगा। शरीर से तो चुप रहेगा फिर भी मन से तो चलता रहेगा, तो मन के चलन को जो देखता है उसका मन रुक जाता है। भोला बाबा कहते हैं, मन मार देता धीर सो भवबंध से छुट जाए। जो मन को मार देता है, मन के कल्पनाओं को संकल्पों को हटा देता है, संकल्पों को देख के ही संकल्पों से अपना पिंड छुड़ा देता है, वो तर जाता है। बाकी तो कोई ईसा की भावना से ईसा का भगत है, कोई राम की भावना से राम का भगत है, कोई देवी की भावना से देवी का भगत है, कोई झूलेलाल की भावना से झूलेलाल का भगत है, कोई विषयों की भावना से विषयों का भगत है। विषयों का भगत विषय होता है, पामरों का भगत पामर होता है, देवताओं का भगत देवताओं तक जाता है। भगवान की आकृति वाला भगत भगवान की आकृति जैसे उसमें जाते हैं लोकांतर में, लेकिन जो भगवान की असलियत को जानता है वो भगवान की असलियत में समा जाता है। पहले जिस प्रकार का आपको ज्ञान होता है, जिस प्रकार की भावना होती है, उसी प्रकार आप पहुंच जाते हैं। भावना हुई मोटे रहने से, तो कहां अपना वो मैसाणे से दूर गांव, कहां इधर। तो कलना जब संसार में होती है तो हम संसार में, जब दुख में होती है तो हम दुख में होते हैं, कलना जब रोग में होती है तो हम रोगी होते हैं। शरीर को रोग है और तुम्हारी कलना कुछ अच्छा चिंतन कर रही है तो आपको रोग का दुख नहीं होगा। राजेंद्र बाबू को फोड़ा हो गया था, राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू, तो नस्तर रखने के लिए डॉक्टर आया, उन्होंने कहा कुछ इंजेक्शन मारे आप, ऐसा क्लोरोफॉर्म का कुछ उपयोग करें शरीर पर, आपको पेन होगा नहीं तो। राजेंद्र बाबू ने कहा ठीक है, ऑपरेशन करना है करो, ऑपरेशन करने की तो मना नहीं है, लेकिन ऐसा है कि ठहरो जरा, मैं गीता पढ़ता हूँ, 2-5 मिनट छोड़ देना, मैं गीता पढ़ता हूँ, गीता में पढ़ते पढ़ते मैं अपनी भावना गीता के ज्ञान में स्थित कर दूंगा और तुम अपना ऑपरेशन कर लेना। राजेंद्र बाबू ने गीता पढ़ी, ऑपरेशन करने वाले ने जो नस्तर रखना था, छोटा सा ऑपरेशन करना था, कर दिया। जब गीता रखी तो बोला बहुत दर्द होता है। पूछा कि इतनी देर आपको जब चक्कू घूम रहा था दर्द नहीं हुआ। बोले उस वक्त मेरी कलना भावना उधर ज्यादा थी, इधर कम थी, होता तो था लेकिन इधर गौण वृत्ति थी और वहां गीता में मुख्य वृत्ति थी। अब गीता छूट गई तो दोनों वृत्ति यहाँ आ गई। ऐसे ही जो ब्रह्मवेत्ता महापुरुष है तो वे जगत में जब होते हैं, जगत के व्यवहार में जब उनकी कलना होती है, तो जैसे हम लोग हैं ऐसे ही वे लगते हैं, खाते हैं, रोते हैं, राग द्वेष खिंचाव तनाव मेरा तेरा ये वो सब हम में और उनमें तनिक भी फेर नहीं लगता, क्योंकि हम वही जीते हैं, वो भी वहां जीते हुए दिखते हैं, लेकिन उनकी जो कलना है, उनकी जो भावना है, वो बाधित हुई है, उनका जाना सारा जो व्यवहार है ना, भुने हुए बीज की तरह है। इसलिए उन्होंने जब तत्व साक्षात्कार किया तो पूरी अविद्या अपने कार्यों सहित बाधित हो गई। पूरी अविद्या जब कार्यों सहित बाधित हो जाती है तो फिर अविद्या के कार्य हम जैसे ही वे करते हुए नजर आते हैं। हो सकता है कि हम देखें तो उनमें आरोप भी करें कि हमारा मन एमना मशो फिर हमारा एमना करता हमें थोड़ा हारा छे, ऐसा भी लगे। जैसे घाट वाले बाबा हैं तो खान पान में थोड़ा अशुद्धि दिखती है तो लगता है साधक को, कह रहे ठीक है बाबा जी तो ज्ञानी तो है लेकिन इनसे तो वो फलाना महाराज जो है बड़े अच्छे पवित्र रहते, ऐसा ठीक है। लेकिन उनके लिए सारा जगत बाधित हो जाता है, सारा जगत अविद्या का कार्य हो जाता है। तो अविद्या का कार्य होने के नाते उनकी गौण वृत्ति और मुख्य वृत्ति दोनों वृत्ति अध्यारोपित दिखती है। अध्यारोप समझता है ना, अध्यारोप का मतलब है कि जैसे है तो भाई रस्सी, एक ने कहा कि सांप है, दूसरे ने कहा नहीं 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 सांप नहीं है ये तो दरार है, तीसरे ने कहा दरार कैसे हो सकती है तो पानी का लीटा है, चौथे ने कहा लीटा भी नहीं है सांप भी नहीं है ये डांग है, पांच महीने का डांग वांग नहीं मरा हुआ सांप है। तो ये सब उसमें अध्यारोप कर रहे हैं। अध्यारोप उन लोगों का इतना ठोस है, रस्सी वाले को रस्सी भासती है, सांप वाले को सांप भासता है, दरार वाले को दरार भासता है, सबको अपने अपने तर्क ठीक लगते हैं। लेकिन जिसको असलियत पांच भूत देखते हैं वो समझता कि ठीक है जो तुम जैसे भावना करते ठीक है बराबर है, तू भी सही है तू भी सही है तू भी सही है तू भी सही है, लेकिन सही होने की तुम्हारी कल्पना है, जगत में ऐसा कुछ नहीं है जो यथारथ हो। जैसी जैसी भावना होती जैसी जैसी कलना होती है, अष्टावक्र महाराज कहते हैं मुक्ताभिमानी मुक्तो हो, मुक्त अभिमानी जो है मैं मुक्त हूं चैतन्य हूं ऐसा जो भाव करते हैं, ऐसी जो कलना पक्की होती है तो मुक्ति का अनुभव करते हैं, और मुझे ये नहीं मिला मैं दुखी हूं तो वो दुखी हो, अब मैं हिंदू हूं तो हिंदू भासता है, मैं मुसलमान हूं तो मुसलमान भासता है। इस अंतर्यामी आत्मदेव का ऐसा चमत्कार है कि जैसा जैसा भाव करो, जैसे जैसे वातावरण में रहो, जैसी जैसी कलना क्रिएट करो, ऐसा हो भासता है। हार तो नहीं जाऊंगा तो हार जाएंगे, ये नहीं है कि ज्यादा लोग जीते हैं जीत सकते हैं, ज्यादा लोग जो होते हैं वो जीतते हैं ऐसी बात नहीं है, कम संख्या के लोग हारते हैं ऐसी बात नहीं है, कलना किसकी ज्यादा है, दृढ़ता किसकी ज्यादा है, जिनकी दृढ़ता ज्यादा है वो जीतते हैं और जिनकी दृढ़ता कम है वो हारते हैं। सिकंदर के पास एक टैक्ट थी, जर्मनी के सड़कों पर लोग घूम रहे हैं, अपने आदमियों को भेजा के देखो जवान कैसे घूम रहे हैं, इनकी रीढ़ की हड्डी जरा कड़ी है कि झुकी है, झुके हुए चलते हैं या मर्दानगी से चलते हैं, सर्वे करो। आदमी ने सर्वे किया, बोले आदमी थोड़े झुके हुए चलते हैं, बोले इनके जीतना सरल है क्योंकि उनके कलना उनका भाव दबा हुआ भाव है, आपड़ू काम नहीं आपड़ू गजू नहीं। गॉड हेल्प दोज हू हेल्प देमसेल्फ, परमात्मा उसे मदद करता है जो अपने आप को मदद करता है। हिम्मत है बंदे मददे खुदा, बेहिम्मत बंदो बेजार खुदा कहावत है। तो ऐसा नहीं है कि तुम बेहिम्मत होते हो और वहीं कोई आकाश पाताल में कोई खुदा नाराज हो जाता है और फिर आदमियों को भेजता कि इसको हरा दो, तुम हिम्मत करते हो तो कोई आकाश का खुदा राजी हो जाता है और अपने गुप्तचर भेज देता है और तुम्हें मदद करता है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, तुम्हारे भाव ही तुम्हें मदद करते हैं, तुम्हारे भाव ही तुम्हें गिरा देते हैं, कोई आकाशचारी आकर तुम्हें उठाता नहीं और कोई गिराता नहीं। वेदांत को समझो तो जीने में इतना मजा आता है, जीतने में इतना मजा आता है, हारने में इतना मजा आता है महाराज क्या कहा जाए। एक अलमस्त तप्त वेता फकीर घूम रहे थे जंगल में अपनी निजानंद की मस्ती में, बोकोजू उसका नाम। बोकोजू को अटक करते थे, बोकोजू को आठ आदमियों ने देखा जिनका धंधा था जंगल में से आदमी पकड़ के ले जाना और गुलाम करके उसको बेच देना, मनुष्य हरण अपहरण करते थे। बोकोजू को देख के वो डर गए। कुजी ने कहा क्या बात है, मैं स्वयं निर्भय हूं, मेरे को देखकर भयभीत होने की क्या जरूरत है, आइए आइए क्या काम है, कैसे आना हुआ, इधर मेरे तरफ आ रहे थे, मेरी नजर पड़ते ही आप पीछे आ गए, क्या बात है, आइए। उन्होंने कहा हम आ नहीं सकते, हिम्मत नहीं होती हमसे, तुम्हारे से डर लगता है। बोले तुम आठ हो, मैं एक हूं, मेरे पास हथियार भी नहीं है, क्यों डर रहे। डर लग रहा है बस, तुम मारोगे तो नहीं। बोले मारेंगे नहीं, आए आए ना, हम मारते हैं ना मार खाते हैं, बताओ आओ क्या बात है। आए बोकोजू ने पूछा कैसे है, क्या धंधा है, क्या करते हो, क्यों आए। बोले धंधा हम क्या बताएं, हम आदमी पकड़ते हैं उसको गुलाम करके बेचते हैं, और हमारा इरादा था कि तुम्हें पकड़े, लेकिन तुमको देखकर हिम्मत नहीं होती तुम्हारे नजीक आने की। अब वो आठ आदमी हैं और गुंडे हैं, उनका स्वभाव है मनुष्य पकड़ना अपहरण करना, लेकिन बोकोजू एक ऐसी सत्यता पर खड़े हैं जहां उनकी वृत्ति बूठी हो जाती। बहुसंख्या से यदि होता तो उनके पास हथियार है, आठ आदमी है और बोकोजू अकेले हैं। बहुसंख्या सफलता का चिन्ह नहीं है, दृढ़ता सफलता का चिन्ह है। एक आदमी यदि अपने स्वरूप में टिक जाए अच्छी तरह से और वो अड़ जाए कुछ करने को, एक ही आदमी, केवल एक आदमी, दो चार नहीं, उसकी पार्टी के आदमी नहीं, दस बीस नहीं, एक ही व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति, और जिसको सब लोग तिरस्कृत करते हैं, कोई उसको सहाय नहीं देता, ऐसा एक व्यक्ति यदि डट जाए अपने स्वरूप में तो समस्त ब्रह्मांड उसकी सहाय करने को बाध्य हो जाएगा, सारे दुनिया के लोग उसके पक्ष में होने को बाध्य हो जाएंगे। पहले हिलाएंगे, अब हिला नहीं तो मैं डट जाने को कहता हूं, हिला नहीं तो सारा संसार उसको सहाय करने को बाध्य है। भोग में न हिला, स्त्री में न हिला, धन में न हिला और अपने असूल पर अड़िग रहा तो दुनिया उसके हां में हां मिलाने को बाध्य होगी ही, लाचार होकर उनको सहयोग देना पड़ेगा। कथा आती है पंचदशी में, पानी के जलाशयों के किनारे पक्षियां घूमे करते, आपके कहे टिटोरी होते तीति होते तीति 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 करके घूम कब्रन वांग टिटोड़ी, गुजराती में टिटोड़ी कहे, सिंधी में लाए छत में रहते थे समुद्र किनारे, उनके बच्चे आने फूटने के थे अंडे, टिटोरे ने कहा चलो अपने दूर आज निकल चलते। टिटोरी ने बोला हमारे बच्चे को क्या होगा, ये समुद्र तो तूफाने चढ़ता है, उसको तो पता भी नहीं कि हमारे बच्चे कैसे घसीट ले जाए, तो ये बड़ा लुच्चा है। टिटोरा बोलता कि पगली, मेरे होते हुए और अपने बच्चे वो ले जाए समुद्र और अपने बच्चे ले जाए, तो क्या नादानी की बात कहती। बोले आप क्या, ये तो इतना बड़ा विश्वास, इतना विश्वास, बोले खबरदार चलो। कथा कहती है कि समुद्र का अभिमानी देव जो आसरा है कि टिटोरा को मेरे सामने टक्कर लेने की हिम्मत करता है, जानबूझ के उसके अंडे छुपा दिए। लौट के आए पति पत्नी, टिटोरी रोई, हाय 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 मेरा तो विनाश हो गया सब चला गया। बोले रोने से क्या होता है, हाय हाय करने से क्या होता है, उसने ले लिए ना बच्चे अपने, अब मैं उसको खाली कर देता हूं समुद्र को, बच्चे ले लूंगा तो क्या डरती। तिनखा उठाया और भरा समुद्र में से, ऐसे चौंच में कैसे उठाया, खारा पानी तो तिनखे में समुद्र का पानी थोड़ा उठाया और दूर फेंक के आया, दो चार बार किया। पत्नी कहती कि ऐसे भी कोई समुद्र सूख सकता है, आप क्या कर रहे हैं। बोले तो मेरे संकल्प में आड़ मत दे, तो यदि मेरी अर्धांगनी है तो मेरा सहयोग कर, नहीं तो दूर भाग। दो चार बार उलटा पत्नी चालू हो गई, पक्षी आए घूमे, मजाक किया कि क्या करते पागल, कहां समुद्र कहां तुम, जरा समझ के तो करो, अकलमंदी तो करो। बोले अकलमंदी यही है कि अपने संकल्प करो नहीं और करो तो फिर अटो नहीं, यही अकलमंदी है, दूसरी कोई अकलमंदी नहीं है। चालू हो गए, पक्षी समझाने वाले उनको समझाता है कि तुम सहयोग करो तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरा उत्साह क्यों तोड़ते हो। पक्षी लग गए 10-20 लग गए तो फिर स्वाभाविक उत्साह के लिए 2-5 और भी लग गए, तो जो पक्षी गुजरते थे लगते गए। कथा कहती है आखिर में देव ऋषि वहां से निकले, देखा कि हजारों पक्षी बस समुद्र से चौंचे भर भर के उलट रहे, समुद्र से भर भर के उलट रहे। देव ऋषि नारद ने देखा कि बात क्या है, यहाँ का मुख्य कौन है तुम्हारे कार्यकर्ता। बोले कार्यकर्ता मुख्य वो है। नारद ने कहा क्या बात है। बोले ऐसे मेरे बच्चे इसने ले लिए, पहले तो पत्नी इनकार कर रही थी, पत्नी लगी, फिर दूसरे इतने हजारों आदमी लगे हैं, हजारों पक्षी हमारे लगे हैं, समुद्र को खाली करके छोड़ेंगे। नारद ने जरा बजाया कि भाई तुम जरा समझो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, और आप क्या करते हैं, तुम्हारी चौंचों से कभी समुद्र खाली हुआ, जाने दो, तुम कहां और वो कहां। टिटोरा बोलता कि तुम संत होकर देव ऋषि होकर हमारा उत्साह भंग करते, संत होकर हमें पिंगला बनाते, तुम्हारा तो दर्शन करके लोग निरुत्साही लोग उत्साहित हो जाते हैं, ना मर्दों में मर्दानगी आती है और मर्द परम मर्द हो जाते हैं, और आप हमें ना मर्दी भर रहे हैं। गुरु जी क्षमा करें, ऐसा कौन सा मेरा पाप उदय हुआ कि आप हमें नामर्दी भरते हैं। नारद ने कहा नारायण नारायण मैं नामर्दी नहीं भर रहा था, कितनी मर्दानगी छुपी है वो जरा टकोरा बजा रहा था यार। समुद्र खाली क्यों नहीं होगा, समुद्र को मद चढ़ा है और जिसको मद चढ़ता है उसका तो मद टूटता ही, प्रकृति का नियम है, अब तुम्हारे द्वारा ही टूटेगा। और इनके जो साथी थे उनको बोल रहे थे शाबाश है लगे रहो, क्यों नहीं देगा बच्चे, देखे ही रहेगा, मेरा आशीर्वाद। नारद चले, घूमते घामते वैकुंठ पहुंच गए, पक्षियों के घर राजा गरुड़, तुम यहां वैकुंठ में आराम कर रहे हो और तुम्हारी जाति के लोग बेचारे चौंचे भर भर के थके जा रहे हैं, तुम्हारे जाति के पक्षी सब परेशान है और तुम यहां आराम की नींद ले रहे हो। पक्षियों के सम्राट, पक्षियों के राजा, आज तुम्हारी पूरी तुम्हारी पक्षियों की पूरी यूनियन परेशान और आप इधर तुम्हारे होते हुए और समुद्र उनसे ऐसा बेवफाई करे। गरुड़ ने कहा पता नहीं। बोले फिर आपको तो पता ही नहीं, आपको ख्याल रखना चाहिए। गरुड़ को भर दिया प्राण। गरुड़ बोलता है ऐसा समुद्र को मद चढ़ा है, मेरे होते हुए समुद्र मेरे पक्षियों को परेशान करे, मैं विष्णु का आदमी हूं, गरुड़ के होते हुए हमारे पक्षियों का अपमान हो जाए, हाउ कैन बी दैट थिंग। राय घुमाए पांख आए कुपित होकर, समुद्र देखता कि अब गरुड़ आ गया है, अब तो काम गड़बड़ है। गरुड़ की आराधना किया और बच्चे लाके रख दिए। तब से आध्यात्मिक शास्त्रों में ये दृष्टांत लागू पड़ जाता कि जो साधक हैं, जो ईश्वर के रास्ते चलते हैं, उनको टिटोरे पक्षी का सामने दृष्टिकोण रखकर घर से कदम उठाने चाहिए। कदम एक पहले रखे नहीं, कायर आदमी तो ईश्वर के रास्ते चले नहीं, और जब एक कदम रख दिया तो पीछे हटे क्यों, हमें हटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। जमाना जड़ है, हम चेतन है, जमाना परिवर्तनशील है और हमारा आत्मा शाश्वत है। शाश्वत के नाद के साथ परिवर्तन को अपना परिवर्तन करना ही पड़ेगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। नहीं खाए आपड़ू काम नहीं, आपड़ू गजू नहीं, ए तो बायला वेड़ा जेना चित्त मां होय, ए पोताना चित्त नी वृत्तियो पोते ज काप्तो छे। संकल्प विकल्प, एक संकल्प करे और दूसरे संकल्प से उसको काट देता है, हम करीशु नहीं खाए तो शक्ति हणाई गई अपनी। ऐसे बद्ध का जो अपने को बंधन में मानता है वो बद्ध है, जो अपने को मुक्त मानता है मुक्त है, जो अपने को हिंदू मानता है हिंदू है, वो मुसलमान मानता है मुसलमान। और यही कारण है कि मरने के बाद हिंदू को स्वर्ग दिखता है, मुसलमान को बिस्त दिखता है, हिंदू को नरक दिखता है और मुसलमान को दोजक दिखता है, हिंदू को अप्सराएं दिखती है और मुसलमान को हूरें दिखती है, तो जैसी जैसी इस चित्त संवित होती है, जैसा जैसा चित्त में इस आत्मदेव की सत्ता से पूर्णा दृढ़ होता है, ऐसा ऐसा जगत, जगत कैसा है डोंट से अबाउट इट, इसके लिए कुछ मत कहो। जगत कैसा है कुछ मत कहो, देखने वाले का किस समय कैसा पूर्णा है, जगत ऐसा है। किसी ने भूत के दर्शन किए हैं, किसी ने रात को भूत देखा है, तो उसको झूठा मत मानो, क्योंकि उसने कल्पनाओं से सुना है और उसका मन, उसकी वृत्तियां नियंत्रण छोड़कर भूत की आकृति ले बैठी है। किसी ने रात को ईसा के दर्शन किए हैं, ईसा मर गए और बाद में उसको ईसा मिले हैं, तो सही कह रहा है। जो मर गए ईसा वो तो नहीं आया, लेकिन इसके मन में जो ईसा बैठ गया वो नियंत्रण खोलकर रात को खड़ा हो गया। किसी को कृष्ण दिख रहे हैं तो झूठ नहीं बोल रहा है, कृष्ण जो बंसीधर थे, जो मूर्ति दिखती है, वो मूर्ति तो अमूर्त में खो गई, लेकिन तुमने मूर्ति देख देख कर इस आत्मदेव की सत्ता से चित्त में मूर्ति फिट कर दी, तुमको वो कृष्ण मूर्ति मंद मुस्कुराता हुआ, गुनगुनाता हुआ, गीत गाता हुआ, नजदीक आता हुआ दिखेगा। मीरा को, मीरा की कल्पना जब दृढ़ीभूत होती थी तो कृष्ण मुस्कुराते हुए नजदीक आते थे, और कल्पना जब विच्छेद हो जाती थी कुटुंबियों के कारण या वातावरण के कारण, या कल्पना एक जैसी रहती भी नहीं, तो कल्पना जब खो जाती तो कृष्ण अदृश्य हो जाते, फिर मीरा रोती। दर्शन दो घन श्याम, नाथ में दर्शन की प्यासी। अब दर्शन देने को आया नहीं था और दर्शन से हट भी नहीं गया, तो उसकी चित्त वृत्ति जब दृढ़ीभूत हुई तो कृष्ण का रूप लेकर आ रहे तो आते हुए देखे, चले तो नहीं जाएंगे, वो चले गए। भागवत में प्रसंग आता है कि गोपियों ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि अधरा अमृत का दान करो प्रभु, धरती इति धरा, जो पृथ्वी का सुख है वो धरा अमृत है, जो पृथ्वी पर न मिल सके, पृथ्वी के पदार्थों से विषयों से जो न सुख मिल सके वो है अधरा अमृत। पांच तत्वों के सिवाय, पंच भौतिक पदार्थों के सहयोग के सिवाय जो सुख है वो निर्विषय सुख है, अन आर्टिफिशियल सुख है। आर्टिफिशियल सुख तो रानियां लेती है, लेकिन हमें प्रभु ये आर्टिफिशियल सुख नहीं चाहिए, हमें अधरा अमृत का दान करो। श्री कृष्ण ने बंसी बजाई, बंसी के नाद से उनकी चित्त की वृत्तियां जो फैली हुई थी वो एकाग्र हो गई। अब एकाकार हो गए तो आनंद आने लगा, आनंद आने लगा किससे आने लगा, बंसी से नहीं, बंसी एक माध्यम बनी। बिखरी हुई तुम्हारी संवित, बिखरी हुई तुम्हारी वृत्तियां तदाकार हुई, और कृष्ण में श्रद्धा थी, भाव था, जहां श्रद्धा और भाव होता है वहां तदाकार वृत्तियां जल्दी होती। इसीलिए आध्यात्मिक जगत में शर्त रखनी जाए पड़ती है कि श्रद्धा है कि नहीं, कितना समझदार हो, कितना विद्वान हो, कितना अकलमंद हो, और श्रद्धा नहीं है तो उसमें आनंद की वृत्ति उठेगी नहीं। बुद्धू है, अकल नहीं है और श्रद्धा है तो आनंद ले लेगा, मजा ले लेगा। बुद्धू नहीं है, अकलमंद भी और श्रद्धा भी है तो समझो उसने तो बस नैया उसकी किनारे लग सकती। इसलिए गीता का कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिया, श्रद्धालु भी हो और इंद्रियों को संयत करने की कला अटकल हो, ज्ञान को उपलब्ध हो जाएगा। जिसके पास श्रद्धा नहीं है और सब कुछ है, श्रद्धा एक ऐसा सद्गुण है कि हजार हजार दुर्गुणों को ढक देता है, और अश्रद्धा एक ऐसा दुर्गुण है कि हजार हजार सद्गुणों को ढक देता है। इसलिए जो बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े समझदार हैं, वे लोग भीतर से बड़े परेशान अशांत हैं, और जो ना समझे वे भी अशांत हैं, दुखी हैं। जिनके पास श्रद्धा है वे समझदार हैं तभी भी मजे में, और ना समझ है तो भी मजे में है। श्रद्धालु लोग बड़े मजे में दिख गए। तो श्रद्धा एक ऐसी वृत्ति है जो तुम्हारी और वृत्तियों को काटने में बड़ा काम देती है। कृष्ण बजा रहे हैं बंसी, आहा तारू मारू एनू तेनू बधू बुलाएगी, लो कृष्ण बंसी बजा रहे और हम सुनेंगे और फिर वहां पहुंचेंगे, कृष्ण के साथ रास करने का मौका मिलेगा। आहा, जिन ग्वाल और गोपियों में श्रद्धा थी, आहा थी, उनको वो बंसी सुनाई पड़ी, भागवत कहता है, दूसरों को नहीं सुनाई पड़ी। कृष्ण ने कहा जो मेरे प्यारे होंगे, जो मेरे भक्त होंगे, जिनको बंसी सुनाई पड़ेगी वो आ जाएंगे। तो जिनमें श्रद्धा थी उनके ही कानों ने बंसी का नाद सुना, और जिनमें श्रद्धा नहीं थी उनको सुनाई नहीं पड़ा। अर्थात तुम्हारी श्रद्धा है तो वृत्ति गहराई से, तुम्हारी श्रद्धा होती है तुम्हारी प्रतिष्ठा में, तुम्हारी इज्जत आबरू में, और जब इज्जत आबरू के खिलाफ होता है तो वहां खिलाफ न हो उसलिए तुम्हारी वृत्ति बहुत जाती है। जैसा तुम निंदा को याद रखते हो ऐसा यदि तुम सत्संग को याद रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा।